नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो एक लेख गायत्री साधना का उद्देश्य और प्रक्रिया पर आधारित है
जी।
और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी गहरी आदतें, अपना स्वभाव बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है।
हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है।
कोई नया विचार अपनाना तो फिर भी आसान लगता है, पर ये गहरी जड़ें, इन तक कैसे पहुंचा जाए।
बिल्कुल, और ये लेख इसी बात पर रोशनी डालता है।
हाँ,
ये बताता है कि हमारे मन के जो अलग अलग लेवल हैं वो कैसे काम करते हैं और क्यों कुछ तरीके आत्म सुधार के लिए, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज्यादा कारगर होते हैं।
अच्छा, तो लेख शुरू कहाँ से करता है, विचारों और स्वभाव के फर्क से?
हाँ बिल्कुल, लेख कहता है कि देखो, विचार बदलना उतना मुश्किल नहीं, आप तर्क दें, कोई सबूत दिखाएं तो इंसान मान जाता है ना।
हाँ, बात तो सही है,
लेकिन जब बात आती है स्वभाव की या किसी की पसंद नापसंद पुरानी आदतें जिन्हें लेख में संस्कार कहा गया है।
अच्छा, संस्कार।
हाँ, तो वो बदलना बहुत मुश्किल है, वो बहुत गहरे जमे होते हैं, जैसे कई जन्मों से साथ चले आ रहे हों।
तो ये इतने मजबूत क्यों होते हैं, लेख में कुछ बताया है?
हाँ, एक अच्छी मिसाल दी है, विचार को एक बच्चे जैसा बताया है और संस्कार को एक ताकतवर, मतलब मजबूत वयस्क जैसा। तो जब दोनों में झगड़ा होता है तो ज्यादातर जीत किसकी होती है?
वयस्क की ही होगी, संस्कार की।
बिल्कुल, संस्कार की। यही वजह है कि जैसे नशे की लत वाले लोग हैं या कोई और बुरी आदत है, वो जानते हैं कि ये गलत है, उनकी बुद्धि को पता है।
हाँ, पता तो होता ही है,
पर वो आदत से मजबूर होते हैं, उनकी बुद्धि उनके वो गहरे संस्कारों के आगे हार मान जाती है।
तो ये संस्कार रहते कहाँ हैं, मन के किस हिस्से में? लेख मन के स्तरों के बारे में बताता है ना?
जी हाँ, चार स्तर बताए हैं। पहला है मन, साधारण मन, जहाँ इच्छाएं कामनाएं उठती हैं।
ठीक है।
दूसरा है बुद्धि, जो सोचती है, विचार करती है, फैसला लेती है, क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या दबाना है।
अच्छा,
लेख कहता है कि ये दोनों जो हैं, मन और बुद्धि, ये स्थूल मन है, मतलब इनको समझाना, इन तक पहुंचना फिर भी थोड़ा आसान है।
तो फिर मुश्किल हिस्सा कौन सा है?
मुश्किल हिस्सा है सूक्ष्म मन, जो गहरा है। इसमें दो चीजें आती हैं, चित्त और अहंकार।
चित्त और अहंकार।
हाँ, चित्त वो जमीन है, कह सकते हैं, जहां ये सारे संस्कार, आदतें, स्वभाव, इनकी जड़ें होती हैं, सब कुछ यहीं जमा होता है।
और अहंकार?
अहंकार है हमारी अपने बारे में मूल धारणा, मैं कौन हूँ वाली भावना, हम खुद को क्या मानते हैं, पापी, पुण्य आत्मा, अमीर, गरीब, सफल, असफल, ये सब।
ये बात तो बहुत गहरी है कि चित्त और अहंकार जुड़े हुए हैं, ये कैसे काम करते हैं साथ में?
लेख के हिसाब से ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। जैसा हमारा अहंकार होगा, मतलब हम खुद को जैसा मानेंगे, वैसे ही संस्कार हमारे चित्त में मजबूत होते जाएंगे।
अच्छा, मतलब अगर कोई खुद को कमजोर मानता रहे
तो चित्त में कमजोरी वाले संस्कार ही पोषित होंगे, मजबूत होंगे, और वो फिर उसके व्यवहार में दिखेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बुद्धि के लेवल पे जानना कि हाँ ये आदत बुरी है, ये काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, जानना एक बात है, बदलना दूसरी।
तो लेख कहता है कि असली बदलाव तब आता है जब इंसान का अहंकार, उसकी वो आत्मधारणा बदलती है।
एकदम सही, जब वो खुद को उस बुरी आदत या उस स्वभाव के लायक ही ना समझे, ये सबसे शक्तिशाली परिवर्तन है।
उदाहरण के तौर पे
मान लीजिए कोई अपनी छवि को एक गिरे हुए शराबी से बदलकर एक सम्मानित, जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखने लगे, गहराई से मानने लगे।
हाँ,
तो ये जो नई मान्यता है, नया अहंकार है, ये चित्त में जमे पुराने शराबी वाले संस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। ये बुद्धि के प्रयासों से कहीं ज्यादा ताकतवर है।
गीता में भी तो कुछ ऐसा ही कहा गया ना?
जी हाँ, लेख में जिक्र है, यो यश श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा या मान्यता है वो वैसा ही होता है, वैसा ही बन जाता है।
तो फिर गायत्री साधना इस पूरी तस्वीर में कहाँ आती है?
लेख कहता है कि वो सीधे अहंकार पर काम करती है। हाँ, लेख के अनुसार साधना का मकसद ही यही है कि मन और बुद्धि की जो भागदौड़ है उसको शांत करके उससे आगे बढ़कर सीधे अहंकार तक पहुँचा जाए।
और गायत्री साधना ये कैसे करती है?
वो साधक के अंदर ये गहरी मान्यता जगाने की कोशिश करती है कि मैं कोई साधारण तुच्छ जीव नहीं हूँ, बल्कि मैं ब्राह्मी शक्ति का अंश हूँ।
ब्राह्मी शक्ति मतलब?
मतलब सृष्टि की जो मूल रचनात्मक दिव्य ऊर्जा है। तो ये साधना मानवीय अहंकार को उसकी जो छोटी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उनसे उठाकर एक ऊंचे दैवी भाव में स्थित करने का प्रयास है।
अच्छा, और जब ये आत्ममान्यता, ये अहंकार बदलता है
तो फिर चित्त की जो आदतें हैं, इच्छाएं हैं, वो सब अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि अब उनकी जड़ यानी अहंकार ही बदल गया है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका आखिरी लक्ष्य एक तरह का पूरा चरित्र बदलना है?
हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेख में इसे अपरा प्रकृति का परा प्रकृति में बदलना कहा गया है।
अपरा प्रकृति मतलब?
हमारी निचली वृत्तियां, हाँ, हमारी जो सहज पार्श्विक या कह लें कि भौतिकता में फंसी हुई प्रकृति है, और परा प्रकृति मतलब हमारी उच्च आध्यात्मिक दिव्य क्षमता। तो लक्ष्य है तुच्छ से महान बनना, बंधन से मुक्त होना।
इसे एक तरह का आध्यात्मिक कायाकल्प बताया गया है।
जी, एक वैज्ञानिक प्रणाली की तरह।
और इसे बाकी साधनाओं जैसे स्वाध्याय, सत्संग वगैरह से ज्यादा प्रभावी क्यों माना गया है?
क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सीधे जड़ पर काम करती है, अहंकार और चित्त के लेवल पर। लेख का तर्क है कि ये एक ऐसा तप है जो आत्मा पर जमे मैल मतलब बुरे संस्कारों को सबसे तेजी से जलाता है। इससे आत्मिक शांति और शक्ति मिलती है, इसीलिए इसे ज्यादा बुनियादी और असरदार माना जाता है।
तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि गहरी आदतें इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि वो संस्कार के रूप में चित्त में बहुत गहरे बैठी हैं।
जी।
और इनको बदलने की असली चाबी सिर्फ सोचने या समझने में नहीं, बल्कि अहंकार यानी हम खुद को क्या मानते हैं उस आत्मधारणा को बदलने में है।
बिल्कुल।
और गायत्री साधना इस लेख के अनुसार इसी अहंकार को बदलने का, उसे ऊंचा उठाने का एक शक्तिशाली तरीका है।
हाँ, यही लेख का मुख्य बिंदु है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है।
किस बारे में?
कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जो मानते हैं, वो अनजाने में हमारी पूरी जिंदगी को, हमारे हर काम को कितना ज्यादा प्रभावित करता है।
क्या वाकई सिर्फ अपनी इस आत्मधारणा को बदल कर ही जीवन में बहुत बड़े स्थायी परिवर्तन लाए जा सकते हैं?
ये वाकई एक गहरा सवाल है, विचार करने लायक।